लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीबन्स के जीवन एवं छठ नागपुर मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं।
चलो मेरे साथ
बेल्जियम के जेसुइट मिशनरी फादर कॉन्स्टेंट लीबन्स ने अथक परिश्रम और त्याग से छठ नागपुर में ख्रिस्त की ज्योति जलाई और यहाँ के पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया। निराशा और पीड़ा भरे समाज में न्याय, समानता और मानव प्रतिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आदिवासी अपनी दयनीय स्थिति से ऊपर उठने लगे। आज हमारा दायित्व है कि हम फादर लीबन्स द्वारा जलाई गई ज्योति को प्रज्वलित रखें और समाज को बेहतर बनाएं। पिछले कार्यक्रम में हमने सुना था कि छठ नागपुर में फादर लीबन्स के लिए मिशन का मुख्य मकसद क्या था। इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे कि फादर लीबन्स किस तरह बड़े साहस के साथ लोगों को जान के खतरे से भी बचा लेते थे। फादर लीबन्स ने रांची में 31 जुलाई को मिशनरियों की सभा के बाद अगस्त में अपनी प्रेरित यात्रा की शुरुआत की, किंतु वे इस यात्रा में अधिक दूर नहीं गए, रांची के निकटवर्ती गांव तक ही दौरा किया। इस छोटी यात्रा में उन्होंने 322 छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया। जब फादर लीबन्स अपनी यात्रा पर थे, रांची में कोलेरा महामारी का प्रकोप दोबारा फैल रहा था। एक दिन जब वे घोड़े पर सवार होकर सड़क पार कर रहे थे, तब एक उड़ाव महिला सड़क के किनारे उन्हें चिल्लाने लगी, फादर कृपया जल्दी आइए, वे मेरे पति को मार डालेंगे। फादर ने महिला का पीछा किया और रांची के निकट मांडर के उत्तर में मुड़मा गांव पहुंचे। वहां पहुंचकर फादर ने देखा कि करीब 40 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी और डंडा लिए उनके घर के आंगन में खड़े हैं और चप्पा नामक ख्रिस्त व्यक्ति को धमका रहे हैं। मुड़मा में कोलेरा से कई लोगों की मौत हो चुकी थी और वैद्य ने कहा था कि ख्रिस्त व्यक्ति चप्पा ही महामारी का कारण है, क्योंकि इसने ख्रिस्त धर्म अपनाकर गांव के देवताओं का अपमान किया है। देवताओं को मनाने के लिए एक बकरी और कई मुर्गियों की बलि चढ़ानी होगी, अन्यथा वे उन्हें जान से मार डालेंगे। किंतु चप्पा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और घोषणा की कि मैं एक ख्रिस्ते हूँ, मेरे बपतिस्मा के दिन मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं फिर कभी शैतान को बलि नहीं चढ़ाऊंगा। आप मुझे मार सकते हैं, मेरी आत्मा ईश्वर के पास पहुँचेगी। जब फादर लीबन्स अचानक आंगन में आ खड़े हुए और चप्पा को अपने पास बुलाया, तो उत्तेजित भीड़ उनके चारों ओर जमा हो गई तथा उन्हें शाप देने और चिल्लाने लगी, दोनों को मार डालो। स्थिति अधिक खराब होने के डर से फादर लीबन्स ने चप्पा को अपने घोड़े में बिठाया और घोड़ा घुमाकर गांव से दूर चले गए। इस तरह उन्होंने उत्तेजित भीड़ से उस व्यक्ति की जान बचाई, जो एक अत्यंत साहस और असाधारण कार्य था। रांची के निकटवर्ती गांव में यात्रा करने के बाद फादर लीबन्स ने पश्चिमी क्षेत्र का दौरा किया। वे 12 अगस्त को रांची से निकले और सीधे दिखिया गए, जहां फादर हेगनबेग भी उनके साथ हो लिए और वे पनारी एवं नवागढ़ की यात्रा करते रहे। फादर हेगनबेग, जिन्होंने 18 महीनों पहले फादर लीबन्स के साथ प्रेरित यात्रा की थी और उस यात्रा की विस्तृत चर्चा की थी, अब अपने कार्य में अनुभवी हो चुके थे। 2 सप्ताह तक यात्रा करने के बाद 2 सितंबर को वे वापस दिखिया लौटे। वे पूरी तरह थक चुके थे। उन्होंने संक्षेप में यात्रा के बारे अपनी डायरी में लिखा, हमने पूरे पनारी और नवागढ़ जिलों का दौरा किया, एक गांव से दूसरे गांव जाते रहे, नदी पार किया और वर्षा के बीच धान के खेतों से गुजरे। कई बार हम कोसों खाली पांव धान के खेतों से होकर गुजरे। एक साथ हमने 2,888 लोगों को बपतिस्मा दिया, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक थी। 14 अगस्त को दोनों मिशनरियों ने तिलसरी गांव में बपतिस्मा दिया, 29 अगस्त को पोरहा और सुलवा में, 30 अगस्त को सोगड़ा और कदादामुस में, 31 अगस्त को करंचार और 1 सितंबर को अम्बोरा, पदारिया, लाखिया, बदौली, सिसाई, कुंदा और सरगांव दुम्बा गांव में 205 लोगों को बपतिस्मा दिया। उन्होंने कुल मिलाकर 87 गांवों का दौरा किया था। पनारी और नवागढ़ की यात्रा आसान नहीं थी। नवागढ़ में उन्होंने आरमाई के बहुत शक्तिशाली और धनी जमींदार डेबू साहू से मुलाकात की। वह अपने स्थान के लिए एक राजा के समान था, जिसके 900 सुरक्षाकर्मी थे। फादर लेबन्स इस संकटपूर्ण व्यू चक्र से नहीं घबराए। उन्होंने खुद पहल किया तथा एक मेहमान की तरह चट्टाई पर आ बैठे। उनके सामने जमींदार अपने पूरे शान से बैठे हुए थे। जमींदार और फादर लेबन्स के बीच कुछ देर वार्तालाप हुई, जो पूर्ण समझौता के साथ कुछ देरी में समाप्त हो गई। समझौता को पुष्ट करने के लिए जमींदार ने फादर लेबन्स को शाही उपहार के रूप में 9 बकरियां भेंट की। इन बकरियों को एक लाइन में खड़ा किया गया तथा एक आदमी आगे बढ़ा और उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। कुछ रीति विधियों को पूरा करने के बाद उसने सभी बकरियों के सिर एक एक करके धड़ से अलग कर दिए। फादर लेबन्स थोड़े प्रभावित जरूर हुए, किंतु वे अभिभूत नहीं हुए। इस तरह फादर लेबन्स कठिन से कठिन समस्या को भी शांत मन से समाधान कर लेते थे और उन्होंने लोगों को हर प्रकार के भय एवं बंधन से मुक्त किया। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवन एवं छोटानागपुर मिशन की शुरुआत के बारे सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत, उसके बाद चेतना जागरण।
चलो मेरे साथ यीशु के घर, चलो मेरे साथ यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, हाँ वहाँ आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है यीशु के घर, शांति ही शांति है यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। डर नहीं है यीशु के घर, डर नहीं है यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। दुख नहीं है यीशु के घर, दुख नहीं है यीशु के घर, यीशु के घर, यीशु के घर, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक विदेश। लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओ, आज के वैज्ञानिक युग में दुनिया सिमट कर रह गई है। एक देश से दूसरे देश जाना तो आम बात बन गई है। कोई विदेश भ्रमण करने के लिए जाता है तो कोई तीर्थाटन के लिए, कोई पढ़ने के लिए जाता है तो कोई शरणार्थी बनकर विदेशों की पनाह लेते हैं। बहुधा लोग नौकरी के लिए अपना प्यारा देश छोड़कर विदेशों की पनाह लेते हैं और वहाँ के तौर तरीकों, भाषा, वहाँ की संस्कृति में अपने को ढाल लेते हैं। उन्हें रुपयों की कमी तो नहीं होती, पर अपने प्रियजन, अपने दोस्त यारों की कमी उन्हें जरूर खलती है। वे अपनों के लिए, अपने गांव, अपने देश के लिए तरसते हैं। दूसरी ओर घर पर बैठे बूढ़े माँ बाप उन्हें देखने के लिए तरस जाते हैं और पल पल उनके लौटने की बाट जोहते हैं। हाँ, अगर फोन द्वारा संपर्क बनाए रखें तो इस व्यथा को कम किया जा सकता है। विशेषकर प्रवासी अगर बूढ़े माँ बाप के लिए अपने व्यस्त समय में से चंद लम्हे निकाल कर उनका हाल चाल पूछ लें तो यह बूढ़े माँ बाप के लिए सोने चांदी से बढ़कर मूल्यवान उपहार होगा। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका, विशेषकर प्रवासियों का मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं अंतरा करवड़े की लिखी नाटिका विदेश।
ओफो, बच्चे तुम भी ना, जब देखो तब कुछ ना कुछ करते ही रहते हो।
अरे यार, अभी तो साफ करके सुलाया था और अभी फिर नैपी गंदी कर रखी है।
जी,
क्या बात है श्रुति, क्यों हमारे नन्हे राजकुमार पर गुस्सा कर रही हो? आ जाओ बेटे, नानी की गोद में आ जाओ। ये मम्मी बहुत गुस्सा करती है ना तुझ पे?
हाँ हाँ, मम्मी गुस्सा करती है, मम्मी बच्चे का ध्यान नहीं रखती है। सारे दर्द और तकलीफें भी मम्मी सहन करती है, फिर भी मम्मी सबसे खराब है। ऐसा क्यों है माँ?
अरे श्रुति बेटी, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है। ये इतना नन्ना सा बच्चा हर चीज के लिए तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। ऐसे में तुम ही इसे तकलीफ मान लोगी तो ये बेचारा क्या करेगा?
काहे का बेचारा, इसकी नानी नहीं है क्या इसके पास?
हाँ भाई, नानी तो है, लेकिन कितने दिनों तक? आपको आगे अपने पापा के पास, दादा दादी के पास नहीं जाना है क्या? मेरा नन्ना मुन्ना राजकुमार, तू बिल्कुल ऐसी ही थी श्रुति, एकदम गोल मटोल गोरी नारी, एकदम बिल्कुल गोल गोथनी सी।
और माँ, विश्व भैया कैसे थे?
विश्व तो जैसे मेरा विश्व ही था, मेरा पहला बेटा, मुझे माँ की पदवी देने वाला। कितने सपने देखे थे मैंने विश्व को लेकर।
छोड़ो भी ना माँ, विश्व भैया अपना भविष्य बनाने के लिए ही तो देश छोड़कर गए हैं, और वैसे भी कोई यूं ही तो नहीं जाता अपनों को छोड़कर, और वहां से पैसे भी तो भेजते हैं आपके लिए।
पैसों से अपनी ममता खरीदी जा सकती है क्या? अरे तुम्हारे पापा को और मुझे ये घर काटने को दौड़ता है श्रुति, कितने अरमानों से ये इतना बड़ा दो मंजिला मकान बनवाया था। कभी बेटा बहू और बेटी दामाद एक साथ आ जाएं, तब भी सभी के लिए ढेर सारी जगह रहे, हमारे नाती पोतों को हम खिलाया करें, और क्या सोचा था। लेकिन
माँ, माँ अपने आप को संभालो माँ। माँ विश्व भैया ना सही, मैं तो हूँ ना आपके साथ, क्या मेरा होना काफी नहीं है माँ?
ओहो, मैं भी कैसी माँ हूँ, महीने भर का बच्चा है तेरा और तेरे सामने क्या दुखड़ा लेकर बैठ चली हूँ मैं भी। चल, इसकी नाइन आ गई होगी, जल्दी से तैयार करके इसे बाहर दे दे, और थोड़ी देर चल तू भी आराम कर ले, कल रात भर कितना रोया है ये, जागता रहा है पूरी रात।
हाँ माँ, रोया तो बहुत, और मुझे भी बहुत नींद आ रही है।
चलो चलो, आ जाओ राजकुमार हमारे पास। अरे बाहर कौन खड़ा है, कौन है वहाँ?
माँ जी, हम हैं गोरेलाल।
अरे गोरेलाल, क्या बात है, बड़े दिनों बाद आना हुआ तेरा। और हरिराम माली कैसे हैं?
अच्छे हैं माँ जी, वो माँ जी मैं।
हाँ बोलो गोरेलाल, क्या बात है?
माँ जी, ये माँ ने मिठाई भिजवाई है, और ये श्रुति दीदी के छोटे राजा के लिए कपड़े।
अरे इसकी क्या जरूरत थी गोरेलाल, और माँ ने भिजवाए हैं? तुम्हारी माँ की तो तबीयत खराब थी ना, तुमने तो कहा था कि पिछले दो महीने से बिस्तर पर है वो।
हाँ माँ जी,
फिर
वो बड़े भैया फॉरेन चले गए थे ना फिटर बनकर, माँ को लगता था कि आएंगे नहीं, दो साल हो गए उनको, वो बांड भरवा लेते हैं ना, इसलिए नहीं आ पा रहे थे।
तो अब आ गए तुम्हारे भैया?
हाँ माँ जी, आ गए भैया और अब जाएंगे भी नहीं वापस। इसी वास्ते तो माँ उठकर खड़ी हो गई फौरन।
बड़ी भाग्यशाली है माँ तुम्हारी, एक मैं हूँ। खैर अच्छा बैठो, ये लो श्रुति दीदी के छोटे राजा को खिलाओ, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आती हूँ। और चाय तो चलती है ना तुम्हें गोरेलाल?
हाँ जी चलती है, ज्यादा चीनी वाली।
बैठो अभी लेकर आती हूँ।
अरे ये माँ सिसकती हुई रसोई घर की ओर क्यों दौड़ पड़ी, बच्चू भी नहीं हाथ में। माँ माँ क्या हुआ माँ? माँ आप क्यों रो रही हैं? जरूर बच्चू ने तकलीफ दी होगी, है ना? वो ऐसा ही है, जब देखो तब सताता रहता है। आपको पैरों में दर्द है ना, और मैं जानती हूँ उसे गोदी में रहकर घूमना अच्छा लग रहा होगा, बढ़ गया ना आपके पैरों का दर्द। ये बच्चू भी
नहीं। श्रुति नहीं, उस नन्हे राजकुमार को मत कहो, वो तो बेचारा फरिश्ता है मेरा, कोई तकलीफ नहीं दी उसने मुझे, खेल रहा है बाहर। वो हरिराम माली का बेटा गोरेलाल आया है ना, उसी के पास है वो।
गोरेलाल आया है? अरे वाह। लेकिन माँ अभी रो क्यों रही थी?
बस ऐसे ही बेटा।
नहीं माँ बोलो तो क्या हुआ?
श्रुति हरिराम माली का बड़ा बेटा भी 2 साल पहले विदेश गया था, कोई खोज खबर नहीं ली उसने अपने माता पिता की, उसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था। आज गोरेलाल आया है, कह रहा है उसका भैया लौट आया। श्रुति कितनी खुशी होगी ना उसकी माँ को आज, उसे तो जैसे सारा संसार मिल गया होगा अब।
माँ तुम क्यों इस बात को इतना मन से लगाए हुए हो, विदेश चले जाने से क्या विश्व भैया पराये हो गए हैं?
मैं नहीं जानती श्रुति, और इस हालात के लिए भी दोषी मैं ही तो हूँ ना।
क्या कह रही हो माँ?
हाँ श्रुति तुम्हारे मामा जी कॉलेज पढ़कर ही विदेश जा बसे थे, जब मेरी शादी हुई तब उसमें भी नहीं आ सके। हाँ उन्होंने मेरे लिए ढेर सारा सोना और जवाहरात भेजे थे, मुझे यही लगा करता था कि विदेश जाने वाला इंसान बड़ा सुखी होता है, वो इतना सारा पैसा जो कमा लेता है। मैंने भी मेरी माँ को ऐसे ही आंसू बहाते देखा था, मैं भी उन्हें यही कहा करती थी श्रुति कि बेटा पैसा तो भेजता है ना। मामा जी की बातें बताते हुए मैंने विश्व को बड़ा किया, उसके सामने उन्हीं का आदर्श रखा, और मेरा बेटा मेरी बात मानकर चला गया, चला गया वो।
माँ माँ ये आप क्या कह रही हैं?
श्रुति
हाँ माँ
मुझसे एक वादा कर बेटा।
बोलो माँ।
श्रुति हम अपने छोटे राजकुमार को विदेश के सपने नहीं दिखाएंगे, हम उसे अपने देश का सच बताएंगे। श्रुति तुम उसे मेरी पीड़ा बताना, श्रुति तुम उसे ये बताना कि रिश्ते क्या होते हैं, हम उसे खूब पैसे वाला नहीं, खूब अच्छे संबंध निभाने वाला बनाएंगे, शायद तभी वो अपनी माँ के साथ, अपनी धरती माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को जान पाएगा, समझ पाएगा।
मैं ऐसा जरूर करूंगी माँ। माँ तुम्हारा नाती अपने देश में ही रहेगा, अपनी माँ के पास ही रहेगा हमेशा, अब तो खुश।
देश अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी, इसके कलाकार थे अंतरा करवड़े, अर्पणा सिंह और संदीप दुबे। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।